पाठ 11 अध्याय 8 और 9 यहूदी प्रकाशन सोसाइटी तोरह कमेंट्री में प्रख्यात बाइबल विद्वान जेफ्री टिगे ने व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के आरंभिक शब्दों के संबंध में यह उत्कृष्ट टिप्पणी की है। वह कहता है, चूंकि उसका संदेश यह है कि इज़राइल को हमेशा परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को याद रखना चाहिए, इसलिए यह उल्लेखनीय है कि मूसा आज्ञाओं का पालन करने की अपील के साथ शुरू करता है। यह बाइबल के इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि ईश्वर के प्रति जागरूकता और आज्ञाकारिता अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। आज्ञाएं ईश्वर के प्रति जागरूकता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति हैं और इसे बढ़ावा देती हैं। व्यवस्था विवरण 8 और फिर 9 में मूसा इसराइल के लोगों को अपना उपदेश जारी रखते हुए उनसे अपील, प्रोत्साहन और विनती करता है कि वे याद रखें कि वे कौन हैं, परमेश्वर कौन है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना यहोवा के प्रति निष्ठा और प्रेम की उचित अभिव्यक्ति है। आज मैं आपको इन अध्यायों में निहित कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांतों को दिखाने के अलावा इसी तरह से आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके उससे प्रेम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। ईसाई चर्च ने सदियों से दुनिया के हर कोने में यीशु के सुसमाचार को फैलाने में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, उसके बावजूद प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने का यह आधारभूत ईश्वर सिद्धांत, जो कि उसके प्रति प्रेम की अपेक्षित अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्ति जो वह हमसे चाहता है, विचित्र रूप से अलग रखा गया है और इसे कम महत्वपूर्ण बना दिया गया है, जबकि इसे होना चाहिए। इसे अक्सर लेबल किया गया है कि उसकी लिखित आज्ञाओं का पालन करना विधिवाद है और इसीलिए यह एक कार्य है और विधिवाद और कार्यों से बचना चाहिए। मुझे एहसास है कि इस शिक्षा को सुनने वाले बहुत से लोग अभी भी परमेश्वर के नियमों और आदेशों के प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता के इस आधारभूत ईश्वर सिद्धांत को परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम की अपेक्षित और मांगी गई व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करने में कुछ अनिच्छा रखते हैं। बहुत से विश्वासी अभी भी जानबूझकर या अनजाने में इस धारणा से चिपके हुए हैं कि यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना हमसे अपेक्षित अंतिम कार्य या आज्ञाकारिता का कार्य है, जबकि यह वास्तव में हमारे उद्धार की प्राप्ति के लिए सच है। यह सच नहीं है जब यह बात आती है कि हमें बचाए गए लोगों के रूप में अपना जीवन कैसे जीना है। शायद व्यवस्था विवरण 8 और 9 हमें सोचने के लिए कुछ देगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हम अपने विश्वास को पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे पेश करते हैं और जिस युग में हम आ चुके हैं उसके कारण यहूदी लोग हमें देख रहे हैं, हालांकि यह आमतौर पर दूर से होता है। देख रहे हैं कि यीशु में गैर यहूदी और यहूदी विश्वासी वास्तव में कैसे काम करते हैं। हाल ही के वर्ष में एक थैंक्सगिविंग डे पर मेरी पत्नी और मेरे मेहमानों में एक तोरह का पालन करने वाला यहूदी भी था, और क्योंकि हमने एक रिश्ता विकसित किया था, वह ईसाई धर्म के बारे में धोरी बात करने और नए नियम के बारे में हमसे कुछ सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करता था। अंत में उसने कहा कि नए नियम और चर्च के साथ उसकी मुख्य समस्या यह है कि यह सब भावनाओं के बारे में है, इसमें कोई सार नहीं है। मैंने उससे कहा कि जबकि उसने कुछ ईसाइयों के बारे में जो देखा है वह सही हो सकता है कि नया नियम किसी भी तरह से भावुकता के आधार पर नए धर्म पर विचार या परिभाषा नहीं करता है, लेकिन जाहिर है उसके लिए बस इतना ही है कि वह उन लोगों के व्यवहार को कैसे देखता है जो नए नियम के अनुसार जीवन जीने का दावा करते हैं। और उसने मुझे जो बताया कि वह देखता है वह यह है कि नए नियम का जीवन स्पष्ट रूप से ईश्वर में विश्वास और ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति सक्रिय रूप से आज्ञाकारी होने की किसी भी इच्छा के बीच पूर्ण वियोग का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि यह किसी भी तरह से सार्वभौमिक नहीं है, मैं यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हूं कि यह पश्चिमी चर्च में एक सामान्य दृष्टिकोण है। अगर आपको लगता है कि यह सच नहीं है तो इस पर ध्यान दें। 25 साल पहले एक अध्ययन से पता चला कि चर्च के अधिकारी सहज रूप से क्या जानते थे। चर्च को दिए जाने वाले सभी दान का 80% केवल 20% लोगों द्वारा पूरा किया गया था। क्या आपने इसे समझा? 1980 के दशक की शुरुआत में चर्च जाने वाले हर 10 लोगों में से केवल 2 ही लगभग सभी सहायता प्रदान करते थे। आज ईसाई विपणन और सूचना एकत्र करने वाली कंपनी बारना की रिपोर्ट है कि यह संख्या तेजी से घट रही है और केवल 10 में से लगभग 1 व्यक्ति ही अधिकांश सहायता प्रदान करता है। खैर, आप कह सकते हैं जरूर, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के पास दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा पैसा है। यह आय में व्यापक असमानता के कारण है। बेशक इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं जो इस धारणा को शांत कर देगा। कुछ साल पहले मैं एक मेगा चर्च का व्यवसाय प्रशासक था, इसलिए अपने कर्तव्यों के हिस्से के रूप में मैंने सभी वित्तीय रिपोर्ट एकत्र की और उनमें से कुछ को समझना था। एक रिपोर्ट ने विशेष रूप से मेरा ध्यान खींचा। मुझे आश्चर्य हुआ कि 1 वर्ष की अवधि के दौरान हमारे चर्च में आने वाले लोगों में से केवल 40% ही कुछ देते हैं। यह सही है, इस चर्च में नियमित रूप से आने वाले हर 10 लोगों में से 6 ने बिल्कुल भी दान नहीं दिया। और जैसा कि पता चला है, यह वास्तव में बारना के सहयोग से क्रिश्चियनिटी टुडे द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार एक सामान्य बात है। यद्यपि यह समाचार अप्रिय है, फिर भी स्वयं सेवा में कमी आ रही है। आज किसी भी तरह से अपना समय देने वालों की सामान्य संख्या चर्च की जनसंख्या का 5% है, यानी 20 में से 11। यीशु ने क्या कहा? फसल तो बहुत है, लेकिन काम करने वाले कम हैं। अब एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता का प्रदर्शन सिर्फ अपने चर्च या आराधनालय को पैसे देने या अपना समय सेवा में लगाने से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह दशकों में एकत्रित एकमात्र आत्मिक माप है और यह निश्चित रूप से इस बात का एक वैध और वास्तविक प्रतिबिंब है कि हम इस बारे में क्या सोचते हैं कि हम परमेश्वर में अपने विश्वास को कितनी गंभीरता से या नहीं प्रकट करते हैं। जब बात उसके नियमों और आज्ञाओं के प्रति सक्रिय रूप से आज्ञाकारी होने या नहीं की आती है। यहां व्यवस्था विवरण में जब मूसा ने उन सभी इसराइलियों के चेहरों को देखा जिनका उसने नेतृत्व किया था, उनकी देखभाल की थी, उनके लिए लड़ा था, मध्यस्थता की थी और उनके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था पिछले 40 वर्षों में, तो यह आज ईसाई धर्म के भीतर की तुलना में थोड़ा अलग था। उसके श्रोताओं में से कुछ लोग प्रभु से उसी तरह प्रेम करने के संदेश पर ध्यान देते थे जिस तरह प्रभु ने मांग की थी उसकी आज्ञाओं का पालन करना। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग माइन सहमति में अपना सिर हिलाते थे और फिर निर्णय लेते थे कि उनके पास छुटकारे का जीवन जीने का एक बेहतर तरीका है, और इसके कारण भयानक परिणाम सामने आए जिसमें सैकड़ों वर्षों के लिए उनकी बहुमूल्य भूमि विरासत से हाथ धोना शामिल था। मसीहा के शिष्यों के रूप में हमारी अंतिम विरासत प्रभु है और हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं या हम भी अपनी विरासत खोने के लिए बाध्य हैं। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता ने इसके बारे में यह कहा, मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, बल्कि वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। 22, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 22, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यीशु किस अधर्म की बात कर रहे हैं? रोमन व्यवस्था को तोड़ना, अमेरिकी नागरिक व्यवस्था को तोड़ना? बिल्कुल नहीं, वह केवल उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो यहूदियों से संबंधित है। वह उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो बाइबल से लिया गया है, सार्वभौमिक है और शाश्वत है, यहोवा का व्यवस्था। आइए हम सब मिलकर व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 सभी पर हैं। अगर ऐसा लगता है कि मूसा कमोबेश खुद को दोहरा रहा है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऐसा कर रहा है। वह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों से समान बातें कह रहा है। हम हर बिंदु पर नहीं रुकेंगे,
लेकिन हम उनमें से कुछ को ध्यान से देखेंगे। पद एक एक मजबूत बयान देता है। इज़राइल के पास जो निर्देश इब्रानी में तोरा वे सुन रहे हैं उसका पालन करने के लिए एक वास्तविक और ठोस कारण है। ऐसा इसलिए है ताकि वे कनान की भूमि में पनप सकें जो उनका अधिकार बनने वाला है। यह उन कथनों में से एक है जो इतनी बार और इतने संक्षिप्त रूप से कहे जाते हैं कि यह हमारे सामने से गुजर सकता है, जैसा कि मुझे यकीन है कि यह उन प्राचीन इब्रानियों के साथ हुआ था। यहां एक क्विड प्रो क्वो काम कर रहा है। यदि आप ऐसा करते हैं इज़राइल, तो मैं प्रभु आपके लिए ऐसा करूंगा। दूसरे शब्दों में वादा किए गए देश में जर जमाए रखने की इज़राइल की क्षमता, साथ ही साथ भूमि में पनपने की पूरी तरह से इज़राइल द्वारा प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने की शर्त पर है। एक बात पर ध्यान दें, जब बाइबल परमेश्वर की आज्ञाकारिता की बात करती है तो अक्सर वास्तव में कहा जाता है परमेश्वर की आज्ञाओं या नियमों का पालन करना। जब बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाकारिता, तो इसका मतलब है उसकी लिखित आज्ञाओं का पालन करना। आज्ञाकारी होने के लिए और क्या है? हमने सदियों से यह सिद्धांत विकसित किया है कि हमें विश्वासियों के रूप में जो कुछ भी मानना है वह किसी न किसी तरह से सीधे परमेश्वर से, हमें व्यक्तिगत रूप से किसी अलौकिक तरीके से प्रेषित होता है या यह हमारे लिए नहीं है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का लिखित वचन पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु द्वारा हमारे मन में डाले गए किसी विचार या निर्देश के अधीन है या उससे भिन्न है। क्या प्रभु हमारे मन में इस तरह से रहस्यमय विचार डालते हैं? बिल्कुल। क्या यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और सीमाओं और आचरण के नियमों को समझने का नियमित रोजमर्रा का तरीका है? बिल्कुल नहीं। प्रभु की विशेषताओं और न्याय प्रणाली जो उनके नियमों और आदेशों द्वारा स्पष्ट की गई है को खोजने का मुख्य तरीका उनके लिखित वचन के माध्यम से है। वास्तव में जब हमें कुछ करने या न करने का विचार आता है जिसके बारे में हम मानते हैं कि वह प्रभु की ओर से है, तो हमें इसे उसके लिखित वचन के साथ जांचना चाहिए कि क्या यह सहमत है। यदि यह सहमत नहीं है या यदि यह उसके लिखित नियमों और आदेशों के विरुद्ध है, तो हमें उस विचार को या तो दुष्ट के प्रलोभन के रूप में त्याग देना चाहिए या शायद हमारे अपने बुरे झुकावों से उत्पन्न कुछ, या यहां तक कि एक अति सक्रिय कल्पना के रूप में। लिखित वचन वह मानक है जिसके द्वारा बाकी सबकी तुलना की जानी चाहिए। परमेश्वर का लिखित वचन विश्वासियों का आध्यात्मिक संविधान है। इस प्रसिद्ध और अक्सर उद्धृत नया नियम अंश को सुने। 2 तीमुथियुस 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो सके, डांट सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए योग्य, हर एक भले काम के लिए तत्पर। इस अंश के बारे में कुछ बातें याद रखें। संत पौलुस जिस एकमात्र पवित्र शास्त्र का उल्लेख कर रहा था वह पुराने नियम का था, क्योंकि उसकी मृत्यु के लगभग एक शताब्दी बाद तक परमेश्वर के कोई अन्य वचन लिखित रूप में नहीं होंगे और प्रेरित बाइबल कैनन के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात जब बाइबल में पवित्र शास्त्र शब्द का उपयोग किया जाता है नए नियम में भी, तो यह केवल पुराने नियम को संदर्भित करता है क्योंकि केवल वही अस्तित्व में था। संत पौलुस, पत्रस, यहां तक कि नवीनतम नए नियम के लेखक जॉन द रेवेलेटर को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि संत पौलुस की शहादत के लगभग 100 साल बाद उनके कुछ पत्रों को चर्च के एक हिस्से द्वारा पवित्र शास्त्र में जोड़े जाने के रूप में देखा जाएगा। यह भी ध्यान दें कि पौलुस ने क्या कहा कि इसका स्रोत शिक्षण, फटकार, सुधार और शिक्षा है, और धार्मिकता क्या है, यह परमेश्वर का लिखित वचन शास्त्र पुराना नियम है। फिर हमें बताया गया है कि हमें इस शिक्षा की आवश्यकता क्यों है और इसका कारण क्या है। यह इसलिए है कि हम क्या करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं, अच्छे काम करने के लिए। फिर से W शब्द है। पौलुस कहता है कि हमें अपने अच्छे काम करने के उद्देश्य से प्रभु की आज्ञाओं को सीखना है। मुझे लगता है कि पौलुस आधुनिक सिद्धांत के द्वारा हमें व्यवस्थावादी होने और अपनी सारी आशा कामों में लगाने के लिए कह रहा है ना?
जाहिर है मैं ये व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल कभी भी अच्छे कार्यों को विधि सम्मत नहीं बनाती, न ही यह विश्वासियों से कहती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं और कार्यों के प्रति आज्ञाकारिता को त्याग देना चाहिए।
प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया इस पर विचार करें। आधुनिक समय के विश्वासियों के बीच यह सबसे आम कहावत है कि एक दूसरे से कहें कि अपने दिल की बात मानो। हमारे दिलों में सच्चाई छिपी है। याद रखें कि जब बाइबल दिल कहती है तो उस युग में दिल को एक अंग के रूप में माना जाता था, जहां सचेत विचार बुद्धि मन रहता था। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमें सावधान किया गया है। यिर्मयाह 17:9, हृदय अर्थात मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और बुरी तरह बीमार, कौन समझ सकता है इसे? जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्या हमारा हृदय मन अब धोखेबाज नहीं रह जाता? पौलुस की बात फिर से सुनिए, रोमियो 7:15, क्योंकि जो मैं करता हूं उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं करता, वरन जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यह वह दुविधा है जिसका सामना हम सभी ईसाइयों के रूप में करते हैं। हमारे मन में जो दुष्ट प्रवृत्ति है वह हमारे उद्धार पर नष्ट नहीं हुई। हम इसके साथ संघर्ष करते रहेंगे, कभी कभी इसके आगे झुक जाएंगे और कभी कभी इस पर विश्वास भी करेंगे, और परमेश्वर के वचन और रुआक हाको देश के माध्यम से हमें दिए गए उनके निर्देशों की अपेक्षा इसका पालन करेंगे। बहुत से महान और योग्य प्रचारक, उपदेशक और शिक्षक बड़ी गिरावट का सामना कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने एक कथित प्रभु के वचन को सुना जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिखित वचन के विपरीत था, चाहे वह सामान्य ज्ञान हो या प्रत्यक्ष आज्ञाएं। उनका मानना था कि किसी तरह उनके दिलों में जो था वह प्रभु के लिखित आदेशों से कहीं अधिक बड़ा और महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, यानी हमें हमेशा उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और अपने विचारों के प्रति थोड़ा संदिग्ध होना चाहिए। इसके बाद मूसा लोगों से कहता है कि वे 40 साल की जंगल की यात्रा में परमेश्वर के उद्धार के कार्यों और उनके विरुद्ध कठोर न्याय को याद रखें। जब वे वादा किए गए देश में पहुंचेंगे तो ये सबक बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उन्हें परमेश्वर पर अपनी निर्भरता और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में उनकी दया को याद रखने की जरूरत है। उन्हें मिस्र से परमेश्वर द्वारा अपने बचाव को याद करने में बहुत विनम्र होने की जरूरत है, जब कोई अन्य तरीका संभव नहीं था, और कैसे उन्हें गुलामी से मुक्त करके बहुतायत की भूमि में परमेश्वर द्वारा लाया गया जब सभी रास्ते अवरुद्ध लग रहे थे। तो सब कुछ महान प्रदाता द्वारा दिया गया दिव्य प्रावधान था, यह उनकी योग्यता या मानवीय क्षमता का परिणाम नहीं था।
महान बाइबल शिक्षकों ने हमेशा माना है कि जंगल में इसराइल के समय का दर्ज इतिहास वास्तविक और शाब्दिक होने के साथ साथ एक भविष्यवाणी की छाया और चित्रण भी था, और यह हमारे व्यक्तिगत पाप की गुलामी से मसीह में मुक्ति की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के पूरी तरह से अनुरूप है, और फिर अंततः परमेश्वर के साथ अनंत काल के वादा किए गए देश में प्रवेश करता है। मैं उस आधार से सहमत हूं, खासकर उस पैटर्न में जो प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दें कि यहां मूसा द्वारा जो बताया जा रहा है उसका एक हिस्सा यह है कि जो नियम लोग सीख रहे हैं वे वास्तव में वादा किए गए देश के बाहर की तुलना में उसके अंदर उपयोग के लिए अधिक हैं। वास्तव में प्रभु के तोरह के कई नियम और आदेश हैं जो उस भूमि पर अधिकार किए बिना और उसमें रहने के बिना लागू नहीं होते। फसल के पहले फल लाने के नियम, बाइबल के 3 पर्वों पर तीर्थ यात्रा करना, और उदाहरण के लिए जयंती और पारिवारिक विरासत के नियम। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि इब्रानियों को छुराया नहीं गया था, फिर उन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं दी गईं, और फिर जब वे वादा किए गए देश में प्रवेश करने वाले थे तो उनसे कहा गया कि वे उन सभी नियमों और आदेशों की अवहेलना करें और अपने मन और दिल का अनुसरण करें, और ऐसा ही हमारे लिए भी है। हमें यीशु द्वारा छुराया नहीं गया है, परमेश्वर की आज्ञाएं दिखाए जाने और उनका पालन करना सीखने में समय बिताया है,
केवल अनंत काल के कगार पर खड़े होने के लिए और यह कहने के लिए कि एक बार जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो कोई और नियम और आदेश नहीं होंगे। हमें अब अपने सांसारिक भौतिक जीवन के दौरान उन आज्ञाओं को सीखना और उनके अनुसार जीना है, क्योंकि हम अनंत काल तक उन्हीं नियमों और आज्ञाओं के अनुसार जीने जा रहे हैं। क्या अनंत काल में उनकी अभिव्यक्ति और अनुप्रयोग अब के विपरीत कुछ अलग हो सकते हैं? संभवतः कुछ हद तक, क्योंकि पुराने समय में जिस तरह से व्यवस्था का पालन किया जाता था, आज उसे थोड़ा अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। वास्तव में संत पौलुस के मिशन का एक हिस्सा यह समझाना था कि यीशु मसीह के आगमन पर व्यवस्था की अभिव्यक्ति और अनुप्रयोग किस तरह बदल गए। इज़राइल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है कि वे कनान पर विजय प्राप्त करते समय अभिमानी और घमंडी न बने। पद 11 से शुरू करते हुए मूसा विस्तार से चेतावनी देता है कि जंगल में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए था। यह उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना और उसी समय उसका भय और भय रखना सिखाना था। चरमोत्कर्ष पद 17 में है, जहां लिखा है, और तुम अपने आप से कहते हो कि मेरी अपनी शक्ति और मेरे अपने हाथ की ताकत ने मेरे लिए यह धन कमाया है। इस अलंकारिक गलत अनुमान के लिए मूसा ने जवाब दिया कि उनके पास जो धन होगा वह प्रभु से होगा, और यह एक वादे के कारण है जो यहोवा ने कुलपिता अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था, और किसी अन्य कारण से नहीं कि इसराइल ने परमेश्वर का इतना अनुग्रह प्राप्त किया है। लेकिन अगर इसराइल भूल जाता है और वह घमंडी हो जाता है तो विनाश उसी रूप में आएगा जैसा कि कनानी लोगों के मूर्ति पूजक राष्ट्रों और गोत्रों के साथ होने वाला है, जिन्हें उनके घरों और जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा।
मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए इस दुनिया में सफल होना, लेकिन फिर पीछे मुद्दा कर उस सफलता के लिए परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करना केवल तभी संभव है जब परमेश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप करके आपको सच्चाई दिखाए। बचाए जाने का कार्य अपने आप में हमें कृतज्ञ या नम्र बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने इसका अनुभव किया है और प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। एक ईसाई के रूप में भी मैं अपने कॉरपोरेट जीवन में आत्मविश्वास से भरा हुआ था और खुद को अजेय और अपनी सफलता का पूर्ण हकदार मानता था। खैर, मुझे इसके विपरीत दिखाने के लिए परमेश्वर द्वारा गंभीर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। यह सबक मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान सबक था, लेकिन उस समय का दर्द भी अविस्मरणीय है। यह वास्तव में हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों का श्रेय परमेश्वर को दें, बल्कि यह खुद को गुणों से भरा हुआ मानना है।
आइए अध्याय 9 पर चलते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 9 का 1-17 पढ़ें।
जब हमने व्यवस्था विवरण शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि यह मुख्य रूप से मूसा का उपदेश था, और इस तरह वह यहोवा के कई नियमों और आदेशों को दोहराता था, लेकिन साथ ही वह उनके अर्थ और उद्देश्य और उन्हें वादा किए गए देश में कैसे लागू किया जाना था इस पर भी प्रकाश डालता था। इसलिए मैं आपको व्यवस्था विवरण अध्ययन में जो पढ़ा रहा हूं उसका स्वरूप उपदेश जैसा है, और यह वास्तव में अपरिहार्य है। मैंने पहले उल्लेख किया है कि नया नियम में पुराना नियम उद्धरणों का 50% से अधिक हिस्सा है। व्यवस्था विवरण यीशु और प्रेरितों द्वारा अब तक की सबसे अधिक उद्धत पुस्तक है, और मुझे लगता है कि यह इसके उपदेश की प्रकृति और व्यवस्थाओं को केवल सूचीबद्ध करने के बजाय उन्हें समझाने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण है। यही कारण है कि माउंट पर उपदेश शायद ईसाइयों द्वारा नए नियम का सबसे अधिक अध्ययन किया जाने वाला हिस्सा है, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है। एक उपदेश जो व्यवस्था की व्याख्या करता है।
यह दिलचस्प है कि अध्याय 9 का पहला शब्द वही है जिसे हमने कुछ अध्याय पहले ध्यान से देखा था। शेमा, अध्याय 9 के पहले दो शब्द शेमा इज़राइल हैं। हे इज़राइल सुनो। याद रखें कि शेमा का मतलब निष्क्रिय रूप से सुनना नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है ध्यान देना और जो कहा जाता है उसे करना। मैंने अक्सर शेमा को सुनना और मानना के रूप में परिभाषित किया है। यह एक बहुत ही जोरदार कथन है, वास्तव में एक मांग है।
अध्याय 9 का पूरा बिंदु यह है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा कनानियों के विरुद्ध पवित्र युद्ध में विजयी होगा। इस विजय में इज़राइल केवल परमेश्वर का प्रतिनिधि, उसका मानवीय प्रतिनिधि है। प्रभु कहते हैं कि इज़राइल युद्ध करने जा रहा है और उन राष्ट्रों को बेदखल कर देगा जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं और जो अच्छी तरह से स्थापित हैं, ऐसे राष्ट्र जिनके पास इज़राइल के आक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा तैयार करने के लिए बहुत समय है। याद रखें कि इज़राइल का गंतव्य मध्य पूर्व के लोगों के लिए कोई रहस्य नहीं था, उनका मार्ग थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन इज़राइल का घोषित गंतव्य कनान हमेशा से ज्ञात था। इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं कि विभिन्न कनान लोगों के महान राजाओं ने आने वाले आक्रमण के लिए ईमानदारी से तैयारी की थी। इज़राइल जिन लोगों से भिड़ेगा उनमें अनाकाइट्स भी शामिल हैं। ये योद्धाओं का एक पौराणिक रूप से बड़ा, लंबा और क्रूर राष्ट्र है। पद दो कहता है कि यह मध्य पूर्वी लोगों के बीच एक आम कहावत थी, अनाक के बच्चों का सामना कौन कर सकता है। परंतु इज़राइल को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर भस्म करने वाली आग है और कोई भी, यहां तक कि अनाक के भयंकर वंशज भी नहीं, यहोवा के विरुद्ध खरा नहीं हो सकता। अब हम आज के पाठ के एक महत्वपूर्ण भाग अध्याय 9 पद 4 पर आते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जब इज़राइल ने कनानियों को अपने अधीन कर लिया, वास्तव में जब परमेश्वर ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, तो इब्रानियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह प्रभु ने हमें हमारे गुणों के कारण इस देश पर अधिकार करने में सक्षम बनाया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वे विशेष रूप से गुणी लोग हैं, इसलिए उनके परमेश्वर ने उन्हें जीतने में सक्षम बनाया है। जैसा कि पद 4 का अंतिम भाग कहता है, यह उन राष्ट्रों की दुष्टता के कारण है कि प्रभु उन्हें बेदखल कर रहे हैं। और फिर वही दोहराते हैं जो अब कई बार कहा गया है, और उस शपथ को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी।
वाह, अगर यह इब्रानियों को प्रभु के सामने उनके स्थान पर नहीं रखता है तो क्या रखेगा? परमेश्वर कहते हैं कि इज़राइल में कभी भी कोई विशेष या अंतर्निहित गुण नहीं रहा है जिसके कारण वह उनके लिए ये सभी अद्भुत कार्य करना चाहता हो। इज़राइल न तो प्रभु के सामने धार्मिकता के साथ पैदा हुआ है, न ही उनके कर्मों ने उन्हें अर्जित किया है। वास्तव में वे पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति से स्वाभाविक रूप से बेहतर या बदतर नहीं है, बल्कि जैसे बाद के समय में जब प्रभु अश्शूरियों, बाद में बेबीलोनियों और अंत में रोमियों को अपने विद्रोह के कारण अपने लोगों इज़राइल पर पवित्र न्याय को नष्ट करने के लिए अपने उपकरणों के रूप में उपयोग करेंगे, वैसे ही परमेश्वर इज़राइल को केवल एक उपकरण के रूप में उपयोग करने वाला है, ताकि वह कनानी गोत्रों पर उनकी दुष्टता के लिए अपना पवित्र न्याय नष्ट कर सके। वास्तव में केवल परमेश्वर के पास ही सच्ची धार्मिकता है। संभवतः संपूर्ण बाइबल में सबसे कठिन और विवादास्पद शब्दों में से एक शब्द धार्मिकता, इब्रानी में जेडेक या इस रूप में जेडेका है। पुराने नियम में शालोम या नए नियम में उद्धार शब्द की तरह धार्मिकता एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे शब्दकोश के तरीके से समझाया जा सके। इनमें से कई बाइबल के शब्द अपने अंदर गहरे और अक्सर गूढ़ तत्व रखते हैं। समय की कमी के कारण मैं इस शब्द का एक विशेष पहलू बताना चाहता हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। यह है कि धार्मिकता के अधिक परिचित पहलुओं के अलावा, जिसका अर्थ है अच्छा या मानक या सामान्य, यह न्यायिक व्यवस्था स्थिति को भी इंगित करता है। बाइबल में व्यवस्था स्थिति ही सब कुछ है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता उसकी न्याय प्रणाली पर आधारित है और इसके विपरीत। इसलिए व्यवस्था न्यायिक दृष्टिकोण से परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है कि वह हमेशा सही है। व्यवस्था की अदालत में बुनियादी समझ यह है कि जब दो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे कि सिविल केस में, या यह सरकार है जो व्यवस्था तोड़ने के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ जाती है, तो एक पक्ष को अनिवार्य रूप से सही और दूसरे पक्ष को गलत के रूप में आंका जाता है। एक बाइबल सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति जिसे व्यवस्था की अदालत में आजमाया गया है और निर्दोष पाया गया है, उसे सही या धार्मिक माना जाता है।
पवित्र युद्ध जिसका आदेश प्रभु कनान पर दे रहे थे वह गलत को बदलने के लिए सही को स्थापित करना था, अर्थात इज़राइल, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि वह सही बातों के लिए उसके सांसारिक प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उन लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए उसका प्रतिनिधि है जो गलत है, कनानियों और उनके दुष्ट तरीकों को। अब यह आप में से कुछ लोगों को थोड़ा परेशान कर सकता है, विशेष रूप से सापेक्ष सही और गलत की दुनिया में, कि एक पूरे लोगों के समूह को सही कहा जाए और लोगों के एक पूरे समूह को गलत की श्रेणी में डाल दिया जाए। लेकिन एक निश्चित अर्थ में यहां यही हो रहा है। धर्मी, जिसका अर्थ है जो सही है, शब्द का यह विशेष उपयोग इस अवधारणा तक भी फैला हुआ है कि वादा किए गए देश में वर्तमान में कनानियों का निवास है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार वहां के नहीं है, बल्कि इज़राइल वहां के हैं। इसलिए यह बिना किसी क्षमा याचना के है कि प्रभु कनानियों को बाहर निकालकर और अपने लोगों को स्थापित करके वर्तमान में जो गलत है उसे सही करता है।
अब मैं इस पर अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ऐसा करूंगा ताकि एक बात स्पष्ट हो सके जो निश्चित रूप से आज मध्य पूर्व की स्थिति पर लागू होती है। इज़राइल द्वारा कनान पर अधिकार करने में परमेश्वर जो कर रहा था वह इज़राइल को ऐसे लोगों के रूप में स्थापित करना नहीं था जो किसी तरह से स्वाभाविक रूप से सही थे, बल्कि उन अन्य लोगों को बेदखल करना था जो इतने बदकिस्मत थे कि वे स्वाभाविक रूप से गलत लोगों के रूप में पैदा हुए थे। क्या आप मेरे साथ हैं? इज़राइल एक सही लोग नहीं थे और कनानवासी अपने स्वभाव या योग्यता के कारण गलत लोग थे। इज़राइल अपने आप में सही नहीं था और इसलिए उस भूमि को पाने का पूरा हकदार था जो वर्तमान में ऐसे लोगों के हाथों में थी जो अपने आप में गलत थे। यह इस बात का भी मुद्दा नहीं था कि इज़राइल धर्मी था या नहीं, यह प्रभु का अपने उद्देश्यों के लिए अपनी धार्मिकता को लागू करना था। संक्षेप में, इज़राइल परमेश्वर की दिव्य धार्मिकता का प्रतिनिधि था जिसका उपयोग उन लोगों के समूह के विरुद्ध किया जाना था जिन्होंने दुष्टता से व्यवहार करना चुना था, कनान के लोग। इज़राइल को परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जोड़ा गया था, इसमें से कुछ भी उनका अपना नहीं था। मैं इसे एक कदम और आगे ले जाता हूं। कोई भी इंसान जन्मजात रूप से धार्मिक नहीं होता। ऐसा कोई राष्ट्र या गोत्र या परिवार नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेकर स्वाभाविक रूप से सही हो, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति या परिवार जन्मजात रूप से गलत हो। जन्म के संयोगों से प्रभु को कोई मतलब नहीं है। यहूदी या अमेरिकी पैदा होने से कोई स्वर्गीय लॉटरी नहीं जीतता, लेकिन इराकी या अरब पैदा होने से हार जाता है। आप देखिए, इज़राइल में जन्मजात धार्मिकता नहीं थी और न ही दोबारा जन्मे ईसाइयों में। छुराए गए इज़राइल के हिस्से के रूप में एक इब्रानी को केवल परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था ताकि वह अपनी धार्मिकता के अनुसार काम कर सके। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उस विशेष इब्रानी में कुछ विशेष प्रकार की धार्मिकता थी जो दूसरों में नहीं थी। यीशु के शिष्यों के समूह के हिस्से के रूप में आप और मैं केवल रहस्यमय तरीके से परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे ताकि वह अपनी धार्मिकता के अनुसार काम कर सके। यहां दुविधा है, क्यों इज़राइल और क्यों मैं? क्यों ईश्वर ने निखियों या ओसामा बिन लादेन को नहीं चुना? क्यों ईश्वर ने इज़राइल को अपने छुराए हुए लोगों के रूप में चुना? और क्यों ईश्वर ने आपको यीशु में विश्वास के अनुसार अपने छुराए हुए लोगों का हिस्सा बनने के लिए चुना और कुछ अन्य लोगों को नहीं? मुझे नहीं पता। बाइबल दोनों मामलों में चुनाव और अक्सर बुलाया शब्द का उपयोग करती है और यह अपने आप में एक लंबा विषय है। यदि चुनाव या बुलाया सही शब्द है, और शायद यह सही है, तो यह संयोग के विपरीत चुनाव या चयन को इंगित करता है। यह ब्रह्मांडीय संयोग से या इज़राइल की स्वनियुक्ति से नहीं है कि इज़राइल ईश्वर के लोग बन गए, इसलिए उन्हें पवित्र शास्त्र में ईश्वर के चुने हुए कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय संयोग से या स्वनियुक्ति से नहीं है कि लगभग 30 ईस्वी के बाद से कोई भी इंसान जिसने यीशुआ में अपना विश्वास रखा उसे मुक्ति मिली। यह ईश्वर की पसंद से था। वह ये चुनाव कैसे करता है, उसके मानदंड क्या हैं? हम नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं चयन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम कौन हैं, हम कहां पैदा हुए, हम पुरुष हैं या महिला, हमारी त्वचा का रंग क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, और न ही इसका किसी प्रकार की संहिता से कोई लेना देना है जो हम में स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से आनुवंशिक रूप से जन्मजात है जो दूसरों की नहीं मिली।
इसीलिए जैसा कि पौलुस ने कहा है, हमें उद्धार के लिए अपने चुनाव के रहस्य को इस प्रकार देखना चाहिए, कुरिन्थियों 1:26, क्योंकि है भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन 27, परंतु परमेश्वर ने और ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए जगत के मूर्खों को चुना है, 28, और परमेश्वर ने बलवानों को लज्जित करने के लिए जगत के निर्बलों को चुन लिया है, और जो तुच्छ हैं उन्हें भी परमेश्वर ने चुन लिया है कि जो उन्हें व्यर्थ ठहराए, 29, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड न करे। वह कमजोर लोगों को चुनता है और ऐसे लोगों को भी जो कमजोर नहीं है, वह तिरस्कृत लोगों को चुनता है और ऐसे लोगों को भी जो नहीं है, वह बुद्धिमान लोगों को चुनता है और ऐसे लोगों को भी जो नहीं है। चुनाव एक रहस्य है, एक अनसुलझा रूब्रिक्स क्यूब। इसमें कोई योग्यता शामिल नहीं है, जाहिर तौर पर कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसके बारे में हम जानते हो, और परिणाम स्वरूप हमें अपने उद्धार को सबसे गहरी विनम्रता और शायद डर के साथ स्वीकार करना चाहिए। संत पौलुस को पता नहीं था कि इसराइल को क्यों चुना गया, कुलपतियों की खातिर जो रब्बियों के लिए भी अस्पष्ट है, या खुद संत पौलुस को क्यों चुना गया या किसे चुना जाएगा, लेकिन हम चुने हुए हैं और चुने हुए ही रहेंगे। परमेश्वर ने इसराइल को चुना और यह चुना हुआ ही रहेगा, और इसलिए यह हमेशा के लिए रहेगा। हम परमेश्वर के चुनावों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता।
अब आज के मध्य पूर्व की बात करें तो जैसा कि मूसा, यहोशू और इसराइलियों के लिए 3300 साल पहले था, आज के यहूदियों के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी सही नहीं है और आज के अरबों के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है। वे सभी सिर्फ लोग हैं। हालांकि बहुत समय पहले प्रभु ने एक चुनाव किया था, इसराइल को परमेश्वर के सेवकों के रूप में अलग करने के लिए चुना गया था, और इसराइल को परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मध्य पूर्व में भूमि का एक विशेष भाग प्राप्त करना था, और किसी और को उस भूमि को रखने का अधिकार नहीं है। इसराइल, चाहे वे कितने भी मूर्ख और हठी क्यों न हो, इसराइल को घेरने वाले दुष्ट राष्ट्रों को दंडित करने का एक साधन बना हुआ है, और साथ ही वे राष्ट्र परमेश्वर के अपने लोगों इसराइल को पश्चाताप के लिए मजबूर करने का साधन है। 3 बार यहूदियों को दुष्ट साम्राज्यों द्वारा निर्वासित किया गया था, जिन्हें प्रभु ने अपने लोगों को अनुशासित करने के लिए अपने एजेंट के रूप में अधिकृत किया था, लेकिन वह समय बीत चुका है और धर्मशास्त्रों में यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसराइल पर दंड के रूप में अंतिम बार निर्वासन का प्रयोग 2000 वर्ष पहले रोमियों के हाथों हुआ था। इसके बजाय हमारे युग में इसराइली अपनी भूमि पर वापस लौटेंगे जो उनके पास है, और वहां उन पर हमला किया जाएगा, उनका खून बहाया जाएगा, उनसे नफरत की जाएगी और उनकी हत्या की जाएगी, न केवल उनके निकटतम पड़ोसियों द्वारा बल्कि पृथ्वी पर हर राष्ट्र द्वारा। उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि उनका सफाया कर दिया जाएगा। हालांकि उनके पूरी तरह से खत्म होने से पहले इसराइल का मसीहा वापस आएगा, इसराइल के बचे हुए लोगों को बचाया जाएगा, और मसीहा यीशुआ पृथ्वी के सभी दुष्ट राष्ट्रों के खिलाफ पूर्ण विनाश के युद्ध का नेतृत्व करेगा, और इस बार ईश्वर के चुने हुए लोग दुष्टों पर कहर बरपाने के लिए ईश्वर के एजेंट होंगे। यीशुआ हमारे मसीहा इस पवित्र युद्ध का नेतृत्व करेंगे ताकि आर्मागेडन में सभी युद्ध समाप्त हो जाए। इसलिए एक बात और सिर्फ एक बात है जिस पर इसराइल परमेश्वर के चुने हुए लोग होने और भूमि पर अपना दावा कर सकता है, यह परमेश्वर का संप्रभु निर्णय था। उन्होंने इसे कभी अर्जित नहीं किया, लेकिन उन्हें इसे अर्जित करने की कभी आवश्यकता भी नहीं थी। ये निश्चित रूप से अब इसके लायक नहीं है,
जितना वे 3,000 साल पहले थे, लेकिन उन्हें इसके लायक होने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस इतना करना है कि वे आज्ञाकारी बने। कोई बात नहीं, परमेश्वर यह दिव्य चुनाव करने में सही है कि वह वहां इसराइल चाहता है और अरबों या किसी और के लिए द्वारा इसराइल के लिए निर्धारित भूमि के एक वर्ग फुट पर भी कब्जा करना गलत है। परमेश्वर आज उसी प्रक्रिया में है जिस प्रक्रिया में मूसा बहुत समय पहले था, जब मूसा इसराइल को बता रहा था कि प्रभु गलत लोगों को सही लोगों से बदलने वाले हैं।
हम यहां रुकेंगे और अगले सप्ताह व्यवस्था विवरण अध्याय 9 के अपने अध्ययन पर लौटेंगे।